शांति। आज सवेरे बाबा ने बहुत ही सुंदर महावाक्य उच्चारण किए और ऐसे ही लग रहा था कि बाबा मेडिटेशन कमेंट्री कर रही हैं, राइट? बिल्कुल फर्स्ट पर्सन के महावाक्य भगवान बोलता जा रहा और हमें वो अनुभव करा रहे हैं कि कैसे अपने को आत्मा इस देह से न्यारे समझ बस घर जाने का संकल्प हो, वही ख्याल चले और कोई बात नहीं। तो सचमुच मेडिटेशन कमेंट्री करते करते हर एक को ये अनुभव हुआ होगा कि बाबा हमें कैसे पार ले जाते, परंतु उसमें जो बाबा के पहली सेंटेंस के ही महावाक्य थे जिसमें बाबा ने कहा कि बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाने आए हैं, वो बड़े शक्तिशाली महावाक्य थे। भगवान आते ही है इस धरा पर हमें आप समान बनाने, और उसमें फर्स्ट स्टेप बाबा कहते कि जैसे मैं हूं निराकार, तुम बच्चों को भी इसी बात को याद रखना है कि आप बच्चे भी निराकार हो। जब अपना ये अनुभव होता कि हम उस निराकार के बच्चे, हम भी आत्माएं निराकार, तो फिर और भी जो बाबा के सब गुण और शक्तियां हैं, हम बाप समान बनने का पुरुषार्थ करके वो सब धारण करते आगे बढ़ते जाते। तो उसमें फिर ये तो हमने देखा है कि भगवान इतना फ्राक दिल है कि जो भी टाइटल्स भगवान के हैं वो अपने बच्चों को देते हैं, अपने टाइटल्स भी अपने पास नहीं रखते हैं, परंतु बच्चों को ही वो भी बिल्कुल वर्षे में दे देते हैं। न सिर्फ बाप बाप टीचर सतगुरु है, परंतु हमें भी बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें आप समान टीचर बनाने आया हूं। और कई बार बाबा मुरली में ये भी कहती है कि तुम बच्चे भी विश्व के लिए सतगुरु हो, उन्हों को राह दिखाने वाले अथवा रास्ता देख करके भगवान के साथ संबंध जोड़कर वो भी पार चले जाएं अथवा गति सतगति का अनुभव करें। तो हर बात में सब कुछ बाबा बच्चों को ही देते। तो एक जो और बाबा का टाइटल है, मुझे लगता है कि जितना जितना वो हम ध्यान पर रखते हैं उतना बाप समान भी बनते जाते, परंतु साथ साथ जीवन का जो परिवर्तन होना चाहिए वो सहज सहज हो सकता, और वो है दुख हरता सुख करता। बाप हमारा दुख हरता सुख करता है, तो हम बच्चों का कर्तव्य क्या है? निराकारी स्थिति में रह के ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान का स्वरूप अपने में धारण करके प्रैक्टिकल जो परिवर्तन आता वो यही कि हम अनेक आत्माओं को सुख देते चले, परंतु कभी हम किसी को दुख न देवे। तो एक एक टाइटल देखते जाओ, एक एक गुण देखते जाओ, तो उससे हमें पता चलता कि हम कहां तक बाप समान बने हैं। लंदन आने से पहले जनवरी का शुरुआती था, मैं एक दिन एक छोटे ग्रुप के साथ फोन पर मिल रही थी, तो उस समय दादी ने भगवान के बारे में एक और बात कही जिसने फिर कहा कि हम बच्चों को भी उसमें भी बाबा आप समान बनाते, और वो तीन भगवान के क्वालिफिकेशंस जिसमें कहते हैं कि भगवान अकर्ता, अभोक्ता, असोचता। तो भगवान के लिए तो ये कहते हैं, क्या हम बच्चे भी ऐसे बन सकते, जबकि बाबा सब कुछ बच्चों को दे रहे हैं, तो अवश्य ये भी हमें सामने रख कर के ऐसे ही पुरुषार्थ करें जो वो भी हमारी स्थिति बनी जाए। उसमें फिर असोचता पहले रखें या अकर्ता पहले रखें। एक तरफ तो ये बात आती कि जो संकल्प में होता फिर और आगे आता, परंतु इस तार दादी का ये कहना था कि पहले तो बाबा कहते हैं कि अकर्ता बनो। जिस तरह से भगवान सब कुछ करते भी, भगवान को कभी ये भान नहीं रहता कि मैंने किया। ब्रह्मा बाबा को भी न सिर्फ जिन्होंने देखा, परंतु उसके बाद भी जो बाबा के बच्चे बने हैं उन्हों को भी यही अनुभव होगा कि ये इतना सारा सब कुछ बाबा ने पहले से ही तैयारी करके रखी थी, बच्चों को भी तैयार करके रखा, और फिर बाबा अव्यक्त होकर के भी इतना सब कुछ करते, परंतु सदा यही कहते कि बच्चे ही कर रहे हैं। तो भगवान अकर्ता, करने का कोई भान नहीं। जिस तरह से बाबा ने आज कहा कि मैं आत्मा इस शरीर में हूं, इस शरीर द्वारा मैं पाठ बजा रहा हूं, परंतु मुझे इस शरीर का भान नहीं, तो तुम बच्चों को भी इस शरीर में होते भी इस भान से परे जाना है। तो न सिर्फ इस शरीर के भान से परे जाना है, परंतु जितना भी बाबा ने सिखाया है और हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वो करते भी ये हमारी स्थिति बने कि हमने नहीं किया। और रियलिटी में मैं तो देखती हूं कि क्या जो भी हम कुछ कर रहे हैं क्या हम कर सकते थे। यदि बाबा न होता और बाबा की दी हुई शिक्षाएं न होती, क्या हम उसका 1% भी कर सकते थे। मैं समझती हर एक को यह अनुभव होगा जब इस बात पर थोड़ा विचार करते हैं कि रियली बाबा ही कर रहा, करा रहा, हम नहीं कर रहे। परंतु फिर भी बिल्कुल ये कॉन्शियसनेस न हो कि मैंने किया हुआ है। और जबकि ये होता कि हमने किया है, तो फिर जो नेक्स्ट स्टेज आती है अभोक्ता, वहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे कर्म का फिर हम समझते हैं कि इतना अच्छा हुआ, औरों को इस बात को मानना चाहिए, औरों को इस बात पर कमेंट देना चाहिए, अप्रूवल देनी चाहिए, कुछ क्रेडिट देनी चाहिए। तो यदि ये हमारा संकल्प होता कि हमने किया, तो क्यों ना लोग उस बात को स्वीकार करें और हमें उस बात का कुछ रिकॉग्निशन देवे। तो उसमें मुश्किल बात ये आती कि यदि हम उसका फायदा उठाने चाहते हैं, तो फिर कोई और बात का जो दूसरे तरफ के कमेंट्स होंगे वो भी हमको बहुत फील होंगे। जो शब्द भोगना है, वैसे तो सुख भी भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं, परंतु भगवान अभोक्ता, न सुख लेता न दुख लेता। और बाबा तो स्पष्ट कहता कि यदि मैं सत्युग के सुख का भोगना अनुभव करूं, तो फिर मुझे दुख का भी भोगना का अनुभव होना पड़े। तो संगम युग में भी जिस समय हमें ये भान होता कि मैंने किया है, थोड़ा सा भी किया है या ज्यादा किया है, हमने किया है, तो फिर उसका जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, हमें जरूर उसका अनुभव होगा। चाहे कोई महिमा करता हमें वो बहुत मीठा लगेगा, और चाहे वो उस बात को नहीं मानता नहीं पसंद करता उसका फिर हमें दुख भी होगा कि क्यों नहीं उनको पसंद आया। तो अकर्तापन की स्टेज आप सोचो कि कितनी ऊंची स्टेज है। और ब्रह्मा बाबा को तो जिन्होंने देखा, कुछ गिनती के ही बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं जिन्होंने वो अनुभव किया, परंतु रियलिटी बाबा मुरली सुना करके अपने कमरे में आते थे, दीदी उसको कहती थी कि चेंबर, चेंबर का वैसे भी शब्द अंग्रेजी का है कमरा, परंतु भाव ये होता था कि बाबा की मुरली सुन करके फिर बाबा के पीछे पीछे कुछ बच्चे बाबा के कमरे में आते थे, तो चेंबर में वो डिस्कशन चलती थी, बाबा आपने ये बहुत अच्छी बात सुनाई, तो बाबा का रूप क्या होता था, कौन सी अच्छी बात सुनाई, मैंने थोड़ी सुनाई, वो आकर के सुना करके वो चला गया। तो बाबा इतना तक भी महिमा स्वीकार नहीं करते, हालांकि मुरली है बाप दादा, अकेला शिव बाबा नहीं मुरली चलाते, परंतु ब्रह्मा बाबा उसमें अपना पाठ का कुछ महिमा स्वीकार करे, मुरली के लिए भी बाबा स्वीकार नहीं करते थे। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा रियलिटी में दोनों ही अकर्ता, जिस कारण से जितनी भी समस्याएं आई ब्रह्मा बाबा उन सब से उपराम। शिव बाबा को तो कुछ असर ही नहीं होता, वो तो ठीक है, परंतु ब्रह्मा बाबा भी कोई बात के भी हलचल में नहीं आए, मान ले मिल रहा अपमान हो रहा बाबा की उस घड़ी समानता की स्टेज, क्यों, क्योंकि रियलिटी अकर्ता भी नहीं तो फिर अभोक्ता भी नहीं, मीन्स अकर्ता है तो फिर अभोक्ता है, दोनों बातों का बिल्कुल गहराई से कनेक्शन है। तो इसी एक बात से भी हमें अपनी चेकिंग हो सकती कि कहां तक हमें उस बात का सुख और दुख की फीलिंग आती, जब वो सुख दुख की फीलिंग आती तो जरूर उसमें हमें कर्तापन का कुछ न कुछ कॉन्शियसनेस आज तक भी है। और जिस घड़ी कर्तापन का, और जो आज बाबा कह रहे थे निराकारी स्थिति, आप समान, बाबा हमें आप समान बना रहे हैं, तो जितना निराकारी स्थिति का अभ्यास अथवा अनुभव उतना फिर साथ साथ अकर्तापन का भी अनुभव हम कर सकते, और फिर हाँ अभोक्ता, सुख दुख मान अपमान कोई बात में भी हमें उसका कुछ असर नहीं हो रहा, हम उस बात में फंस नहीं जाते। आप सोचो कि ब्रह्मा बाबा इतने समय से 1969 से बाबा वतन में हम सब बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, बाबा को तो मालूम होगा कि इतना समय लगने वाला है, हम बच्चों को मालूम नहीं था कि इतना समय लगने वाला है, परंतु बाबा ने अपना जो पुण्य का खाता था पहले से ही इतना श्रेष्ठ कर्म करके जमा कर लिया, उसके बाद वतन में इतनी जो सेवाएं बाबा ने की है उसमें भी बस वो विश्व के कल्याण अर्थ, अपना अपने खाते के लिए नहीं। तो जिसको हम वास्तव में कहते हैं अकर्म, ब्रह्मा बाबा डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा इतने वर्षों से कि वो अकर्ता और अकर्मा, करते भी कर्म मैंने नहीं किया और करते भी उसका फल बाबा ने अपने पास नहीं रखा है, बस विश्व कल्याण अर्थ बाबा करते गए हैं। तो हम अपनी यदि उस स्थिति को सामने रख करके बाबा को फॉलो करते जाते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ की बातों का जो सुख दुख की बातें हैं हम उस भोगना से ऊपर जाते रहेंगे, परंतु आज तो छोटी बातों में भी हमें उसका असर आ जाता, तो उससे ही पता चलता है कि अभी तक अकर्ता की स्टेज से आत्मा थोड़ी दूर है, परंतु जितना उसका अभ्यास, बिल्कुल मैंपन नहीं तो फिर भोगना भी बिल्कुल नहीं। और जबकि अकर्ता और अभोक्ता कोई बात का हम रिजल्ट स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से असोचता भी बन सकते। मतलब कि किसने कुछ कहा उसके ऊपर ही हमारा मनन चिंतन चलता, क्यों कहा, कैसे कहा, क्या कहा, परंतु जबकि उस भोगना से ही आत्मा दूर चली गई, तो जो और कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसका तो बिल्कुल संकल्प भी नहीं, वो सोचना भी नहीं। परंतु साथ ही साथ जो संकल्प उठ रहा है, वो संकल्प भी रियलिटी प्रैक्टिकल होता जा रहा। जिस तरह से भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान को संकल्प उठा और उस एक संकल्प से भगवान सृष्टि पर आए और स्थापना और पालना का कार्य करने लगे। विनाश का कार्य तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता, परंतु भगवान के एक संकल्प से ही भगवान का कार्य शुरू हो गया। भगवान ने बहुत ज्यादा समय बैठ करके सोचा नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है, अभी टाइम आ रहा, अभी घड़ी आ रही। एक संकल्प आया और उस एक संकल्प से ही भगवान सृष्टि पर आ गए। और आप सोचो कि हम लोगों के लिए कोई हमसे कहते हैं कि क्या हमें प्लान नहीं बनाना पड़ता, क्या हमको भविष्य के लिए नहीं सोचना पड़ता। और रियलिटी में बाबा को देखो, शिव बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा को देखो, संकल्प जो उठते हैं उसका प्रैक्टिकल स्वरूप, तो कोई एक्स्ट्रा सोचने की बात ही नहीं है। तो असोचता जिसमें यहाँ के आवाजों से भी पड़े तो उस पर भी कोई सोच नहीं, परंतु बिल्कुल पास्ट की बातों का भी कुछ सोच नहीं, नहीं तो मनुष्य की एनर्जी कितनी जाती है पास्ट की बातों में सोचने के लिए, और फिर भविष्य के लिए कितनी चिंता रहती। एक तरफ कहेंगे हम प्लान बना रहे हैं, परंतु रियलिटी में न सिर्फ प्लान बना रहे हैं परंतु बहुत कुछ संकल्प चल रहे हैं। और यदि बाबा जैसे पास्ट का कोई सोच नहीं, भविष्य के लिए जो आज करना है वो संकल्प आया वो करते चलो, तो फ्यूचर वो बनता जाता। और वैसे भी जैसे आज बाबा के स्लोगन में था, जबकि मालूम ही है कि जो ड्रामा में होने वाला है वो सबसे अच्छा ही होगा, तो उसमें ज्यादा सोचने की मार्जिन नहीं। तो जबकि बाबा की बातों को देखते हैं, सुनते हैं, उस बात पर थोड़ा विचार करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जो बाबा ने स्टेज बताई है, अकर्तापन, अभोक्तापन, असोचतापन, उस स्थिति को भी प्राप्त कर सकते। ये मुझे एक बहुत वंडरफुल बात लगती है कि न सिर्फ ये एक हमारा भाग्य है कि हम भगवान को जानते हैं और भगवान ने हमें ढूंढ करके अपना बनाया, परंतु साथ ही साथ भगवान के पास जो कुछ खजाना है भगवान ने हमें दे दिया। और फिर हाँ, जिसकी जितनी झोली खुली होंगी, जिसकी जितनी झोली मजबूत होंगी, उतना वो खजाना उसमें अपने पास भरपूर होकर के रख सकता, और यदि झोली में थोड़ी सी भी छेद होंगी तो फिर वो नहीं हो पाता, या झोली थोड़ी कमजोर होंगी तो थोड़ा भी मिलने से वो झोली टूट जाएंगी। परंतु मजबूत भी हो और साबुत भी हो, कुछ छेद ना हो, तो फिर जितना भगवान दे रहा उतना हम अपने में वो भरते जाएं। तो फिर न सिर्फ हम भगवान को जानते हैं, न सिर्फ भगवान के खजाने से हमें बहुत कुछ प्राप्ति है, परंतु साथ ही साथ भगवान आप समान बनाने आए हैं। ये आश्चर्य की बात है। और कभी कभी बाबा बहुत सिंपल भाषा यूज करते और बाबा का रूप भी बहुत साधारण, चाहे अव्यक्त बाप दादा को देखो चाहे साकार बाबा को देखो। तो बाबा कभी कभी कहते ना कि बाहर वाले लोग इस कारण से बाबा को नहीं पहचानते, परंतु साथ साथ बाबा कई बार कहते हैं कि ब्राह्मण भी जो बाबा को पहचानते हैं वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो भगवान को जितना जितना पहचान कर हम उस अनुसार भगवान को फॉलो करते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और उसके दिव्य चरित्र को सामने रख करके उसको फॉलो करते हैं, तो बाबा आए ही हैं हमें आप समान बनाने के लिए। तो जो भगवान की और महिमा है, सत्यम शिवम सुंदरम, तो जितना जितना हम बाबा के सत्य ज्ञान को अपने में धारण करते जाते, उतना शिव शब्द कल्याणकारी, बिल्कुल हर आत्मा के लिए कल्याण की भावना। जहां सत्यता है वहां और कोई भावना होगी नहीं, सिर्फ कल्याण की ही भावना। मैं समझती संडे की मुरली में था जिसमें बाबा ने कहा कि जब आप किसी को देखते हो और आप उन्हों की कमियों को देखते हो, चाहे वो महारथी है फिर आप कहते हैं कि महारथी होकर ऐसे क्यों करते हैं, परंतु आप अपनी इस बात में अंदर की आंख बिल्कुल बंद कर दो। कारण आपने उनों का त्याग नहीं देखा, उनों की तपस्या नहीं देखी, उनों की एक छोटा सा अवगुण पर ही आपका ध्यान चला गया, तो उसमें फिर आपने जो बात देखी वो आपके अंदर आती ही रहेंगी। आपने अच्छी बात देखी तो वो भी आपके अंदर वो आती रहेंगी। तो मुझे ये बात बहुत बिल्कुल लगी कि ये एक बहुत सहज है किसी के ऊपर कमेंट करना या क्रिटिसाइज करना, परंतु उनों की अच्छाई को देख करके प्रभावित न हो, परंतु अच्छाई को देख करके वो हम गुण अपने में धारण करते चले, तो अपना भी कल्याण परंतु साथ ही साथ और आत्मा का हम गुण देखते हैं तो उसके लिए भी जैसे कि हम सपोर्ट देते हैं। इंग्लिश में शब्द आता है एम्पावरमेंट, किसी के अंदर और शक्ति भरना, ये खुद के लिए शब्द आता है। वैसे अपने में अपने अंदर हम शक्ति भरे, परंतु दूसरे के लिए भी हम किसके अंदर वो शक्ति का सपोर्ट दे सकते जबकि हम किसी के भी गुणों को देखते हैं। तो जब गुणों को देखने की आदत होती तो फिर हम सबके लिए कल्याण की भावना रख सकते, जबकि हम गुणों को न देख और कुछ बात देखते तो हम कल्याणकारी कैसे बन सकते, न अपना कल्याण न औरों के लिए कल्याण। तो सत्य ज्ञान, शिव बाबा सत्य है, कल्याणकारी शिव है, तो कितना न सुंदर है। और जब सचमुच जिस आत्मा के अंदर प्रेम भावना है, सत्य भावना है, वो कितनी सुंदर आत्मा लगती। मुझे कई बार ये बहुत अच्छी बात लगती कि जब बाहर वाले हमारी दादियों के साथ मिलते हैं, दादी जी के लिए कहते थे शी इज ब्यूटिफुल, अभी 86 ईयर ओल्ड बहन के लिए आप कहो शी इज ब्यूटिफुल तो उसका मतलब क्या। परंतु रियली आत्मा के अंदर इतनी शुद्धि, इतनी सुंदरता, जो दादी का चेहरा ही इतना सुंदर। दादी जानकी के लिए भी कहीं कहते हैं दादी योर आईज आर वेरी ब्यूटिफुल, आपकी आंखें बहुत सुंदर लगती है। आज कोई मुझे कह रहा था कि दादी गुलजार की आंखें कितनी सुंदर है, कितनी शक्तिशाली है। तो 98 इयर्स ओल्ड, 86 इयर्स ओल्ड, ये क्या बात है। परंतु रियलिटी जितना ही अंदर की सच्चाई और जितना ही उस आत्मा में हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, वो प्रेम भावना, तो फिर रूप भी एक्सटर्नल रूप, आत्मा तो है सुंदर परंतु उसका एक्सटर्नल रूप सुंदरता वो नजर आती। तो आज की मुरली साकार मुरली में बाबा इतना आप समान के लिए बता रहे थे, तो आप समान हम बने, ये हम लक्ष्य न सिर्फ लक्ष्य रख करके चले परंतु अपने को उस आईने में देखते चले, बाबा कैसा और हम कैसे। और वैसे भी नॉर्मल रीति से ये होता, जैसे बाप वैसे बच्चे, परंतु यहाँ पर फिर थोड़ी मार्जिन आ जाती है नंबर वार पुरुषार्थ की। परंतु जैसा हमारा बाप वैसे हम बच्चे बने, आप समान बाबा बनाने आए हैं, तो सब बाप समान बन जाए तो बाबा की प्रत्यक्षता बहुत फास्ट हो जाए। लोग भगवान से बहुत दूर हो गए हैं, परंतु ये भी मैं समझ सकती हूँ कि सर्वव्यापी की बात यहाँ से ही निकली, परंतु रियली जब हरेक के अंदर वो भगवान के गुणों की झलक नजर आएंगी तो कहेंगे हाँ सचमुच भगवान आया है, भगवान अपना कार्य कर रहा है। अभी तो भारत में आए हैं, थोड़े दिन ही हुए, और भी आगे सीजन में रहेंगे, फिर तो मिलते रहेंगे। और बाकी एक और बात में कहेंगे, शांति वन्यवासी इतनी बेहद की सेवा करते, इतना सब कुछ करते, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।